तारीख 14 जून दिन शुक्रवार दिन भर नमस्कार। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों की हड़ताल, दिल्ली पहुंची एम्स और सफदरजंग ठप।
कोई भी स्ट्राइक पेशेंट के अगेंस्ट नहीं है, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो हमको रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे जो पेशेंट हैं वो हमको भगवान भी मानते हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने की डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO की बैठक के दूसरे दिन आतंकवाद का मुद्दा उठाया और वो फैसला जिसने बदल दी भारत की राजनीति। क्या हुआ जब इंदिरा गांधी अदालत में आई?
जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा कोर्ट में आए और उन्होंने ये अनाउंस किया कि देखिए अदालत में लोग सिर्फ जज के लिए खड़े होते हैं, तो जब प्रधानमंत्री कोर्ट में आए तो किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए।
पर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार सर्वप्रिय सांगवान के साथ। भारत के कई शहरों में डॉक्टर अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता के एक अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला हुआ, जिसके विरोध में शुरू हुए ये प्रदर्शन अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गए हैं। देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सिर्फ सरकारी ही नहीं, निजी अस्पताल भी इस हड़ताल से प्रभावित हैं। कई अस्पतालों में सिर्फ आपात सेवाएं ही काम कर रही हैं। सुरक्षा चिंताओं को जाहिर करने के लिए कई डॉक्टरों ने हेलमेट पहनकर और सिर पर पट्टी बांधकर काम किया। डॉक्टर चाहते हैं कि चिकित्सीय सेवाएं देने वाले कर्मचारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान हों। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान की खाड़ी में 2 तेल टैंकरों पर हुए हमले का आरोप ईरान पर लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से जारी वीडियो फुटेज पर उन्हें पूरा भरोसा है। अमेरिका का कहना है कि वीडियो में ईरान के सेना बल तेल टैंकर पर लगे चुंबकीय विस्फोटक को हटाते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इन सबूतों पर हर जगह ईरान लिखा है। ईरान ने इन हमलों में शामिल होने की बात से इनकार किया है। ईरान ने कहा है कि ये हमले दुनिया और ईरान के बीच संबंध खराब करने पर आमादा तत्वों ने किए हैं। किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग परिषद के सम्मेलन में हिस्सा लेने गए ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा,
مناطق پیرامونی ما با بحران‌های متعددی روبروس که با از بین بردن زیرساخت‌های
हमारा क्षेत्र कई संकटों का सामना कर रहा है, जिससे यहां हालात चिंताजनक हैं। देशों के मूलभूत ढांचे तबाह हो रहे हैं और इससे गंभीर सुरक्षा खतरे भी पैदा हुए हैं। दूसरी ओर अमरीकी सरकार बीते 2 साल से सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रही है, अपनी आर्थिक सैन्य और वित्तीय ताकतों का इस्तेमाल करके आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, जिससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। ये थे ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पूर्वी इलाकों में फैले इबोला वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन आपात बैठक कर रहा है। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए या नहीं। यदि इसे आपातकाल मान लिया जाता है तो रोकथाम के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मी और पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। इबोला महामारी की वजह से करीब 1400 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया था, क्योंकि ये कांगो तक ही सीमित थी। लेकिन इस सप्ताह ये बीमारी युगांडा तक पहुंच गई है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों को अलग थलग करके रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि युगांडा से इलाज के लिए कांगो लाए गए 3 साल के बच्चे की भी मौत हो गई है। मुलाकात से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्रिश्चियन लिनमेयर ने कहा,
All countries which are in the area have been informed and have been advised of the ongoing situation in the DRC.
इस क्षेत्र के सभी देशों को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जारी हालात के बारे में परामर्श और जानकारी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित होने की स्थिति में सभी देशों के लिए मजबूत दिशा निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन ठीक इसी समय सभी पड़ोसी देशों को सलाह दी जा रही है। वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह का इंतजार भी कर रहे हैं। हम उनके साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। जानकारी दे रहे थे विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्रिश्चियन लिनमेयर। जनवरी में सत्ता संभालने के बाद से ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो को पहले विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देश की वित्तीय राजधानी माने जाने वाले साओ पाउलो समेत कई शहरों में सार्वजनिक यातायात सेवाएं ठप हैं। एक दिन के इस प्रदर्शन में तेल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल अब दिल्ली भी आ पहुंची है। दिल्ली में सभी सरकारी डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर कोलकाता में डॉक्टरों पर हुए हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। केवल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर यहां के ओपीडी बंद हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के अलावा यहाँ के कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हाल बेहाल है। ओपीडी में डॉक्टरों की अनुपस्थिति ने आपातकालीन स्थिति बना दी है। हर सरकारी अस्पताल के बाहर मरीज और उनके परिजन बेहाल हैं। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी पहुंचे एम्स और सफदरजंग अस्पताल में।
राजीव रंजन जी अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं इस संगठन के।
देखिए, हमारी जो मांगे हैं वो क्रिस्टल क्लियर है। हम तो दो मिनट में हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार हैं। हमारे हड़ताल पे जाने की कोई इच्छा भी नहीं थी और हम जाना भी नहीं चाहते हैं, बट हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमें जाना पड़ रहा है स्ट्राइक पे। और इसमें मैं पहले ये बता दूं, पेशेंट सर्विसेज हमने हैम्पर नहीं करे हैं, बस हमने ओपीडी भी बंद नहीं है, फैकल्टीज चला रही है और जो हमारे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं वो चला रहे हैं। बट द थिंग इज दैट कि आप ये बताइए, अगर डॉक्टर खुद अपने आप को अपने लाइफ को थ्रेट महसूस करेगा तो उस परिस्थिति में कैसे वो डिलीवर कर पाएगा अपना 100%।
आपकी मांगे हैं जो मेरे हाथ में हैं कि कानून बनाना चाहिए सरकार को, जिसमें डॉक्टरों की सिक्योरिटी पर एक अध्यादेश लाने की आप बात कर रहे हैं और अस्पताल की सिक्योरिटी की सर्विसेज भी जो है ट्रेंड।
देखिए, आज से 10 साल पहले ऑलमोस्ट 19 states में ये लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड मेडिकेयर। ये वायलेंस 19 state में है अभी भी, बट आज तक किसी एक को भी सजा नहीं हुई है में, और अभी तक एक सेंट्रल लॉ नहीं बना है इसके अंतर्गत। तो सबसे बड़ी यह व्यथा है, हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट, तो इसमें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरवीन नहीं कर सकती है। जैसे कि अभी जो मसला ये हुआ है वेस्ट बंगाल का, ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है, सी इज हैविंग द होम एंड हेल्थ बोर्ड डिपार्टमेंट, सी इज हीडिंग द हेल्थ एंड बोर्ड डिपार्टमेंट। दो मिनट में ये मैटर सॉल्व हो जाता है, बट रादर देन गोइंग एंड मीटिंग दैट अफेक्टेड विक्टिम डॉक्टर, सी इज इंस्टिगेटिंग एंड थ्रेटनिंग द डॉक्टर्स कि आप 4 घंटे में काम पे आओ नहीं तो आपको हॉस्टल से बाहर फेंक देंगे। इस मनोवृत्ति से कैसे कोई डॉक्टर काम करने जाए?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपना पूरा नाम बताइए।
मेरा नाम डॉक्टर जवाहर सिंह है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं आरडीएम।
मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है तो स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब रह जाता है?
देखो, हमने पिछले लास्ट 3-4 दिन में हमने स्टेट की तरफ ही देखा है, स्टेट कोई प्लान एग्जीक्यूट करे ताकि हमें ट्राई के लिए बिल्कुल नहीं रेडी। हम तो मरीजों से भी ज्यादा परेशान है, हमें मरीज तो इतना तो सेफ है कि उनके ऊपर अटैक नहीं होगा, हमारे ऊपर कब अटैक हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, जैसा कि आपने अभी देखा है।
अभी आप अटैक की बात कर रहे हैं तो मैं ये पट्टी देख रहा हूँ, ये सचमुच की है या झूठ मूठ की है?
बिल्कुल, दिस इज ए सिंबोलिज्म फॉर प्रोटेस्ट फॉर दैट डॉक्टर हु इज लाइंग देयर इन द आईसीयू राइट नाउ। आप मेरे को ये बात बताओ, अगर आपके किसी घर के सदस्य को मार पड़ती है, कोई बाहर वाला आके मारता है, आप क्या करते हो? सबसे पहले एक बड़ा भाई आता है, उसके बाद उसकी माँ आती है, उसका बाप आता है, जो जितने भी आसपास पड़ोसी हैं वो आते हैं, वो उनको बचाने के लिए आते हैं। इसलिए ये आज सारा जमावड़ा जो लगा है उनको बचाने के लिए ही है।
देखिए, हमारी जो इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म मांगे हैं वो सारी तो आप देख रहे हैं, अभी इमीडिएट प्रॉब्लम एक अलग चीज़ है, एक इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म जो हम लंबे समय से कर रहे हैं कि हेल्थ केयर इंप्रूव हो जाए उसकी मांगे अलग है। लेकिन अभी जैसे कि आप कह रहे हैं तो देखिए, पहली चीज़ तो है कि ये कोई भी स्ट्राइक पेशेंट के अगेंस्ट नहीं है, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो हमको रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे जो पेशेंट है वो हमको भगवान भी मानते हैं।
लेकिन वो अस्पताल जहाँ पर स्ट्राइक पर लोग गए हैं आज, जहाँ कॉमन मैन जाता है, जहाँ गरीब आदमी जाता है जो अफोर्ड नहीं कर पाता है प्राइवेट, अब तो प्राइवेट क्लिनिक्स भी हड़ताल पर है, तो ऐसे में अगर मरते हैं लोग तो उसकी जवाबदेही फिर किसकी हो?
देखिए, ये जो आपने अभी सवाल पूछा कि अगर कोई मर जाता है तो उसकी जवाबदेही किसकी है, यही एटीट्यूड जो है वो वायलेंस को लीड किया। अगर देखिए, अभी हमारी इमरजेंसी टीम्स चल रही है, इसके बावजूद भी डेथ और लाइफ एक पॉइंट के बाद डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है। पर ये जो ये जिस एंगल से जो सवाल आता है कि इसकी जवाबदेही किसकी है, तो डॉक्टर को हर डेथ के लिए जवाबदेही मानना और फिर वायलेंस करना,
तो ये मामला अभी सलटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चूंकि स्टेलमेट की स्थिति बनी हुई है। बंगाल की सरकार अपनी जगह पर अडिग है, डॉक्टर अपनी मांगों पर अडिग हैं, और लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो अल्टीमेटली पेशेंट्स को होगा। सलमान रावी, बीबीसी, एम्स, दिल्ली।
जी, तो जैसे कि आपने सुना, ये हड़ताली डॉक्टरों की आवाज थी और जो पीड़ित मरीज हैं उनकी आवाजें हमने कल आपको इस कार्यक्रम में सुनवाई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी हड़ताली डॉक्टरों से धैर्य और धीरज बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने मीडिया के जरिए अपील की कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं। उन्होंने कहा,
देश के सरकार की ओर से ये आश्वासन भी देता हूँ। ममता बनर्जी जी को भी पत्र आज लिखूंगा, कल सारे मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखूंगा कि उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट सारे देश में बने। उसके लिए जो जो कुछ किया जा सकता है, कानूनी दृष्टि से अगर कुछ किया जा सकता है वो भी किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से किया जा सकता है वो भी किया जाए, लेकिन मेरी डॉक्टरों से और मेडिकल एसोसिएशन से ये विशेष अपील है कि कोई भी मरीज जो है डॉक्टर की स्ट्राइक के कारण सफर नहीं होना चाहिए, और डॉक्टरों को स्ट्राइक मैं समझता हूं कि करना भी नहीं चाहिए।
और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने ममता बनर्जी को एक चिट्ठी भी लिखी है। अब बात उस राज्य की यानी कि पश्चिम बंगाल की, जहां से ये डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हुई, वहां क्या स्थिति है, मैंने पूछा कोलकाता में बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली से।
देखिए, आज भी पश्चिम बंगाल के सारे मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज होते हैं, जो किसी भी सरकारी अस्पताल का जो सबसे महत्वपूर्ण काम वही निभाते हैं, तो वो स्ट्राइक पर ही है। और साथ ही साथ सीनियर डॉक्टर्स और नर्सेज भी आज उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए कुछ देर के लिए स्ट्राइक जहां कर रहे हैं, जहां इकट्ठा हो रखे हैं, तो वहां पर गए थे। और शाम को एक बहुत बड़ी रैली हुई है डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी के लोग, जिसमें डॉक्टर विनायक सेन शामिल थे, अपर्णा सेन जैसे हस्तियां शामिल हुए हैं, और बहुत ढेर सारे सिंगर्स, पेंटर्स, स्कल्पर्स ये भी शामिल हुए हैं डॉक्टरों के साथ। वो एक रैली कर निकाले थे एनआरएस मेडिकल कॉलेज, जहां से ये घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी सोमवार रात को, वहां से दूसरी एक मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज तक वो रैली किए हैं।
ममता बनर्जी सरकार क्या कर रही है, हालांकि कल उन्होंने चेतावनी दी थी कि डॉक्टर अपनी हड़ताल वापस करें ताकि अस्पतालों का जो सामान्य कामकाज है वो पटरी पर लौट सके, लेकिन कुछ हुआ नहीं?
जी नहीं, अभी तक तो सरकार की तरफ से भी कोई, ममता बनर्जी ने जो कल धमकी दी थी उसके बाद ना तो कोई सरकार से कुछ बात सामने उभर के आया है, ना ही दोनों में कोई चर्चा या आलोचना हुई है। और एक महत्वपूर्ण चीज हम बता दें, मोहनलाल, के पश्चिम बंगाल के सारे सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से सीनियर डॉक्टर्स मास रेजिग्नेशन देने लगे हैं। कहीं 100, कहीं 200, कहीं 60-70, ऐसे संख्या में कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में इस वक्त लग रहा है कि 300 से ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स वो रिजाइन कर चुके हैं, रेजिग्नेशन जमा किए हैं, हालांकि एक्सेप्टेड नहीं हुआ है अभी तक।
और इस बीच ये बताएं कि अस्पतालों के क्या हालात हैं?
अस्पताल के हालात जैसे पिछले 3 दिन से चल रहा है ऐसे ही हालत है, पर कुछ अस्पताल में जो इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो बंद पड़ा हुआ था वो अब खुलने लगे हैं। एनआरएस मेडिकल कॉलेज से लेकर के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज, लगभग मोटे तौर पर सारे मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी ऑपरेशन सिर्फ शुरू किया गया, और वो भी जूनियर डॉक्टर्स उसमें शामिल नहीं हो रहा है, वहाँ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स ही वहाँ किसी तरह उसको मैनेज कर रहे हैं।
कोलकाता से ये थे बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली। तो जैसा कि आपने सुना, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धमकियों और चेतावनियों के बावजूद पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जस की तस है, और अब तक राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के 406 डॉक्टरों ने आंदोलन के समर्थन में सामूहिक इस्तीफे दिए हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक के दूसरे दिन आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समर्थन, वित्त प्रदान करने वाले देशों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। इससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, कि नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति और किर्गिस्तान के राष्ट्रपतियों से मुलाकात कर चुके हैं। सुनिए विनीत खरे की रिपोर्ट।
किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई कोऑपरेशन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिए बिना कहा कि जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है।
इससे पहले नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिले। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है और दोनों देशों को और साथ मिलकर काम करना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान डिनर टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान जहां भारत से बातचीत की बात करता रहा है, भारत का कहना है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते।
बारह जून का दिन भारत के इतिहास में दर्ज है एक फैसले की वजह से। 44 साल पहले 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने कि भारत की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी। आज विवेचना उसी फैसले पर, और यहां पर हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कर रहे हैं। बारह जून 1975 की सुबह 10 बजे से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भर चुका था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर पूरे देश की नजरें थीं, क्योंकि वो राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। मामला 1971 के रायबरेली चुनावों से जुड़ा था। ये वो ही लोकसभा चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी। इंदिरा खुद भी रायबरेली से चुनाव जीती थी। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण को 1,11,810 वोटों के भारी अंतर से हराया था। लेकिन राज नारायण अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला था। पर जब नतीजे आए तो राज नारायण के होश उड़ गए। नतीजों के बाद राज नारायण चुप नहीं बैठे। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, अपील की कि चूंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया है, साथ में वोट खरीदने के लिए पैसे भी दिए हैं, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसी मुकदमे में फैसला सुनाने जा रहे थे। जस्टिस सिन्हा ठीक 10 बजे अपने चैंबर से कोर्ट रूम में आए। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया कि राज नारायण की याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों को उन्होंने सही पाया है। कोर्ट में बैठे सभी लोग सन्न हो गए। मतलब साफ था, इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हो रहा था। इधर नई दिल्ली में समाचार एजेंसियों के टेलीप्रिंटर चल रहे थे। एक प्रिंटर प्रधानमंत्री के चैंबर में था। लगभग 10 बजे यूएनआई के टेलीप्रिंटर पर फ्लैश निकल रहा था, मिसेस गांधी अनसीटेड। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सिन्हा अपना फैसला सुना चुके थे। राज नारायण की याचिका में जो 7 मुद्दे इंदिरा गांधी के खिलाफ गिनाए गए थे, उनमें से 5 में तो जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को राहत दी, लेकिन 2 मुद्दों पर उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया था। फैसले के तहत जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा के 123 के तहत अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया गया था। राज नारायण की ओर से जिरह कर रहे थे शांति भूषण। मार्च 1975 का महीना, जस्टिस सिन्हा की अदालत में दोनों ओर से दलीलें पेश होने लगी। चुनावों के दौरान रायबरेली में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे राम रक्षपाल गुप्ता याद करते हैं।
एक बस सरेनी ब्लॉक की तरफ से आई, मजिस्ट्रेट होने के नाते राज नारायण जी ने मुझे इंगित करके कहा कि ये फर्जी वोटर्स हैं, और मैंने तुरंत उस बस को लालगंज थाने में ले जाकर और सबसे पहले उसके बयान लिए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उसने कहा कि मैं घुमाने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा कि भाई कोई हिस्टोरिकल प्लेस, कोई ज्योग्राफिकल प्लेस, कोई रिलीजियस प्लेस, इस टाइप की कोई इस एरिया में हो तो तुम मुझे बताओ। तो वो चुप रहा। तो मैंने फिर उसके सारे पेपर्स लेके, जो पैसेंजर्स उसमें थे, सबको थाने में बंद कर दिया। इसमें मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, और राज नारायण जी खुश होकर चले गए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनका बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होने का फरमान जारी किया। तारीख तय हुई 18 मार्च 1975। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुकदमे में प्रधानमंत्री को पेश होना था। जस्टिस सिन्हा ने भी पेशी की तैयारी की। सवाल यह था कि जज के सामने प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का शिष्टाचार कैसा हो, क्योंकि अदालत में सिर्फ और सिर्फ जज के प्रवेश करने पर ही खड़े होने की परंपरा है, पर जब प्रधानमंत्री सामने हो तो। शांति भूषण बताते हैं कि उस दिन किस तरह से अदालत लगी थी।
जिस दिन इंदिरा गांधी आने वाली थी, उस दिन इंदिरा गांधी के कोर्ट में घुसने से पहले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा कोर्ट में आए और उन्होंने ये अनाउंस किया कि देखिए अदालत में लोग सिर्फ जज के लिए खड़े होते हैं, तो जब प्रधानमंत्री कोर्ट में आए तो किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। उस समय पासेस से एंट्री उस कोर्ट रूम में थी, 12 पासेस उन्होंने दोनों पार्टी के सीनियर एडवोकेट्स को दिए थे। खरे साहब को 12 पासेस के, तुम नॉन लॉयर्स को 12 को जिसको चाहो बुला लो पास, मुझको भी दिए थे 12। तो जब इंदिरा गांधी आई तो कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन खरे साहब की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कुछ ना खड़ा हो, तो वो आधे खड़े होकर ये भी न समझा जाए कि खड़े हो गए, ये भी न समझा जाए कि नहीं खड़े हुए, तो वो सब हम लोगों ने सब ने नोटिस किया।
अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। इंदिरा और उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि अदालत का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है, तो ऐसे में जगमोहन लाल सिन्हा को प्रभावित करने की कोशिशें शुरू हुई। शांति भूषण कहते हैं,
ये तो बाद में पता लगा हमें, इंदिरा गांधी के डॉक्टर थे डॉक्टर माथुर, उनकी रिश्तेदारी थी इलाहाबाद के चीफ जस्टिस जस्टिस DS माथुर से। तो जगमोहन लाल सिन्हा ने उसके बहुत बाद मुझे गोल्फ कोर्स में बताया कि एक दिन जस्टिस DS माथुर चीफ जस्टिस अपनी पत्नी को लेके जगमोहन लाल सिन्हा के यहाँ घर पे आए जब फैसला सुरक्षित था, और इनसे ये कहा कि भाई इस केस के फैसले के बाद मुझे ऐसा पता लगा है कि तुमको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी है। इशारा था कि अगर तुमने उनके पक्ष में फैसला किया तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जाना पक्का है, तो ये एक लालच देने की कोशिश हुई।
लेकिन जस्टिस सिन्हा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। जन प्रतिनिधित्व कानून में इसका इस्तेमाल भी चुनाव कार्यों के लिए करना गैर कानूनी था। इन्हीं दो मुद्दों को आधार बनाकर जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा के लिए हुआ चुनाव निरस्त कर दिया। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी हाईकोर्ट जज ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला सुनाया हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की खबर लगते ही प्रधानमंत्री आवास पर एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर से मैंने पूछा कांग्रेस के खेमे में उस समय क्या चल रहा था।
अब ये जजमेंट जब आ गया तो मुझे याद है मैं जगजीवन राम से मिलने गया, बाबू जगजीवन राम जब वाज द नेक्स्ट, तो मैंने कहा कि बाबू जी अब क्या होगा। कहते भाई कायदे से तो उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए लेकिन वो करेंगे नहीं, तो मेरा मतलब मैंने कहा आप लोग कुछ करेंगे। कहते नहीं वो किसी में हिम्मत नहीं है, यहाँ से कोई नहीं करेगा, अगर वो स्टेप डाउन करती है तो फिर आपस में झगड़ा होगा कि कौन हो सकता है। कहता मैं भी अच्छा, ये कि मिसेस गांधी टू माइंड में थी, एक तो भाई के जजमेंट है, दूसरा कि ये बुरा सा लगेगा मैं नेहरू की बेटी और एक अदालत ने कहा फिर भी नहीं कहूँगा, तो शी वाज। लेकिन अब संजय को जब ये फीलिंग हुआ उसने कहा कि इस माँ की वीकनेस जानता था, को रैलीज वैलीज कराओ, तो उसने आदमियों वगैरह को इकट्ठा किया। बंसी लाल हुआ करता था हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, तो उसको कहा, उसने बसों में वहाँ से आदमी लाए और कहा कि देश की नेता इंदिरा गांधी नहीं जाने देंगे, इसे रिजाइन नहीं करने देंगे। तो उससे मिसेस गांधी को ये ख्याल हुआ कि लोग तो मुझे चाहते हैं, चाहे मैं जो अब अगर लोग मुझे चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं रहूँ।
इस बीच कानून मंत्री गोखले के पास ये सूचना आई कि जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिन का स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास का माहौल थोड़ा सुधरना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी की ओर से मशहूर वकील नानी पालखीवाला को बुलाया गया। पालखीवाला ने सलाह दी, हाई कोर्ट में ये मामला ढंग से नहीं लड़ा गया। फिर से सारे पेपर्स तैयार किए गए। आखिरकार इंदिरा गांधी की ओर से अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई 22 जून 1975। ये वैकेशन जज जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर के सामने आई। इंदिरा गांधी की ओर से पालखीवाला ने बात रखी। राज नारायण की ओर से शांति भूषण अदालत में मौजूद थे। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि उन पर भी इस केस को लेकर दबाव बनाने की कोशिश हुई।
एक्सीडेंटली आई वाज द वैकेशन जज एट दैट टाइम एंड गोखले माय क्लोज फ्रेंड ही टेलीफोन्ड मी।
संयोगवश मैं सुप्रीम कोर्ट में सेशन जज था। गोखले उस वक्त देश के कानून मंत्री थे, मेरे करीबी थे। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, कृष्ण अय्यर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो जवाब मैंने उन्हें दिया उसकी उम्मीद उन्हें कतई नहीं थी। मैंने पूछा कि क्यों मिलना चाहते हैं। मेरे दिमाग में भी कुछ संशय था। वजह साफ थी कि वो मुझ पर दबाव बनाकर स्टे लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द हो गया है और वो इसके खिलाफ अपील कर स्टे लेना चाहते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपील करें, न कि घर पर मिलें।
कृष्ण अय्यर ने पालखीवाला से कहा कि आपको जिरह करने के लिए कितना वक्त चाहिए। 3 घंटे जिरह के लिए और 1 घंटे जवाब के लिए। अय्यर ने फैसला लिया, अदालत इस मामले पर फैसला सुना कर ही उठेगी। और हुआ भी यही, कोई लंच ब्रेक नहीं। शाम 5:30 बजे तक अय्यर मामले की सुनवाई पूरी कर चुके थे और उसके बाद मध्य रात्रि तक अय्यर अपने स्टेनोग्राफर को फैसला लिखाते रहे। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दिया, लेकिन ये पूर्ण स्थगन आदेश न होकर आंशिक था। उनके फैसले के मुताबिक बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकती हैं, बात भी रख सकती थी, या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी तनख्वाह या भत्ते ले सकती थी, लेकिन बतौर सांसद न तो वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकती थी और न ही वोट डाल सकती थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती थी, लेकिन कुछ रोक के साथ।
कृष्णा अय्यर का जो जजमेंट था वो मेरे हिसाब से बहुत बुजदिल था। उनको चाहिए था कि या वो इंडोर्स करते उस जजमेंट को जो अलाहाबाद की, उन्हें इंडोर्स नहीं किया। उसने कहा कि यही स्टेटस को रहेगा और सिर्फ मिसेस गांधी को यही एक सजा दी कि वो वोट नहीं कर सकती पार्लियामेंट में, बाकी तो सब कुछ है। हम उन दिनों में कहा करते थे, माना जाता था बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो भी स्टैंड अप नहीं किया। अगर स्टैंड अप किया तो उसी सिन्हा ने किया और किसी ने।
जस्टिस अय्यर के इस फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर अपने हमले और तेज कर दिए। 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की रैली रामलीला मैदान में हुई। शुरुआत की दिनकर की मशहूर कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है।
आगे गए हैं जिसको रेडियो ने, टेलीविजन ने, कांग्रेस नेताओं ने, उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, सब लोगों ने ज्यादा सामने लाया कि जैसे उनका प्राइम मिनिस्टर रहना ये सुप्रीम कोर्ट ने उचित माना है, आवश्यक माना है कानूनन, और जिसके ऊपर उसने फैसला दिया।
जेपी रैली में बोल रहे थे और इस रैली के बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है।
और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। वो फैसला जिसने भारत की दशा और दिशा ही बदल दी, ये विवेचना आप सुन रहे थे और इस कार्यक्रम का हमने आपको पुनः प्रसारण किया है। और कार्यक्रम में अब बात करेंगे खेल समाचारों की।
बात क्रिकेट वर्ल्ड कप से है।
हमारे सामने वरुण दत्ता मौजूद हैं। वरुण, आज आप पहली बार कार्यक्रम में शामिल हैं।
हाँ जी सर। सर, बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की करें तो आज खेला जा रहा है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच मैच। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला लिया और वहीं बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने 44.4 ओवर में 212 रन बनाए। और वहीं अभी मैच का ताज़ा हाल ये है कि इंग्लैंड का स्कोर हो चुका है 82, एक भी विकेट नहीं गिरा है इनका और 12.5 ओवर हो चुके हैं,
यानी कि 13वां ओवर खेला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण दत्ता।
थैंक यू सर।
भारत के कई शहरों में डॉक्टर अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान की खाड़ी में दो तेल टैंकरों पर हुए हमले का आरोप ईरान पर लगाया है। किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग परिषद के सम्मेलन में ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्वी इलाकों में फैले इबोला वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन आपात बैठक कर रहा है। जनवरी में सत्ता संभालने के बाद से ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को पहले विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।